उठा था खाली टकोरे बजावता है। चेतन तो वो काम आएगा, परमात्मा हमारे अवश्य साथ रहेंगे, इसलिए उस चेतन के बल से ही हम सब कुछ संसार में बलवान बन सकते हैं, जड़ के बल से कभी नहीं बन सकते। इसलिए सावधान होकर के कभी भी इस जड़ता का भरोसा मत रखो, चेतन का सहारा रखो और उसके संबल से ही सब कुछ भला होगा, क्योंकि पारस रूप तो परमात्मा का नाम है। हरि पारस सत गुरु जी से पाया, हरि
पारस सत गुरु जी से पाया,
दिल की गांठी में बांध घुड़ाया,
दिल की गांठी में बांध घुड़ाया, हरि पारस सत गुरु जी से पाया, हरि पारस सत गुरु जी से पाया, हरि पारस सत गुरु जी से पाया।
अनंत जन्म की भूख गमाई,
अनंत जन्म की भूख गमाई,
हरि पारस सत गुरु जी से पाया,
हरि पारस सत गुरु जी से पाया,
दिल की गांठी में बांध घुलाया,
दिल की गांठी में बांध घुलाया,
हरि पारस सत गुरु जी से पाया,
हरि पारस सत गुरु जी से पाया।
हम तो होता छुरी कसाई,
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 परस परस सोल मोथाई,
परस परस सोल मोथाई,
हरि पारस सत गुरु जी से पाया,
हरि पारस सत गुरु जी से पाया,
दिल की गांठी में बांध घुड़ाया,
दिल की गांठी में बांध घुड़ाया,
हरि पारस सत गुरु पाया,
हरि पारस सत गुरु जी से पाया,
नकसक बीचे कसर नहीं काई,
नकसक बीचे कसर नहीं काई,
आदि अंत कब पलट न जाई,
आदि अंत कब पलट न जाई,
हरि पारस सत गुरु जी से पाया,
हरि पारस सत गुरु जी से पाया,
दिल की गांठी में बांध घुड़ाया,
दिल की गांठी में बांध घुड़ाया,
हरि पारस सत गुरु जी से पाया,
हरि पारस सत गुरु जी से पाया,
जेती धातु हमारे आवे,
जेती धातु हमारे आवे,
जेती धातु हमारे आवे,
जेती धातु हमारे आवे,
परस्याते कंचन हुए जावे,
परस्याते कंचन हुए जावे,
हरि पारस सत गुरु जी से पाया,
हरि पारस सत गुरु जी से पाया,
हरिपाल सत गुरु जी से पाया,
हरिपाल सत गुरु जी से पाया।
दिल की गांठी में बांध घुलाया,
दिल की गांठी में बांध डुलाया,
हरिपाल सत गुरु जी से पाया।
ओ हरिपाल सत गुरु जी से पाया,
रामदास के कमियन काई,
रामदास के कमियन काई,
रामदास के कमियन काई,
रामदास के कमियन काई।
कंचन खान खुली घट माही,
ओ कंचन खान खुली घट माही,
कंचन खान खुली घट माही,
कंचन खान खुली घट माही।
हरिपाल सत गुरु जी से पाया,
हरिपाल सत गुरु जी से पाया।
दिल की गांठी में बांध घुलाया,
दिल की गांठी में बांध घुलाया,
हरिपाल सत गुरु जी से पाया,
ओ हरिपाल सत गुरु जी से पाया,
हरिपाल सत गुरु जी से पाया,
हरिपाल सत गुरु जी से पाया।
ऐसा पार्श मिला है गुरु महाराज से सज्जनों, जो कभी भी बदलने वाला नहीं है, कभी खराब होने वाला नहीं, कभी खोने वाला नहीं। उसको दिल की गांठ में बांध करके घुड़ा करके कहना गुड़ गांठ दे पर मायने बांध मेल दियो, दिल की गांठ दे दिल मायने छुपाने मेल दियो, जो बाहरे निकले तो पाछो कोई दिखे ही को नहीं। जिनको मिला है पारस उसी को उसके आनंद की अनुभूति होती है। नक्सक बिचे कसर न इकाई, मैं तो होता छुरी कसाई, मैं तो कसाई की छुरी था संसार में, मान पात की प्राणी था, परंतु भगवान ने गुरु महाराज ने कृपा करके ऐसा पारस दे दिया जिसके कान से मैं तो लोहे से बदल करके और स्वर्ण रूप बन गया, और बना भी ऐसा कुछ समय के लिए टेम्परेरी नहीं, सदा सदा के लिए। आदि अंत कबू पलटन चाहिए, नक्श शिखा पर पूरे शरीर में पारसपण है, एक आधी जगह नहीं, कुछ एक जगह ऐसी बात नहीं। मैं ऐसा पारस हूं जिससे कि कोई भी मेरे पास में चीज आएगी तो स्पर्श करते ही सोना बन जाएगी, पारस बन जाएगी, सोना बन जाएगी छूती। इसलिए बता देगी रामदास के कमीन का ही, मेरे तो किसी बात की कोई कमी नहीं अब जीवन में, क्योंकि कंचन खान खुली घटमाई, मेरे हृदय में ही सोने की खान खुल गई। खान बाटारी खाणिया निकले नहीं जोधपुर में, जो कितनी खाणिया खोदता खोदता कितना खाडा कर दिया है वो बताओ, कितने बाकर ने खोद खोद करके गाड़िया में रेला में ट्रका में भर भर के कटे कटे पहुंचा दिया, अभी भी निकल दिया है। इसी प्रकार कहते हैं वो ऐसी खान मेरे दिल में खुल गई है रत्नों की, वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। कंचन खान खुली घटमाई, रामदास के तोटो नाई, किसी प्रकार कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। ये हमारी कमी भी यदि हम गुरु महाराज के शरण में जाते हैं तो वो मिटा देंगे सज्जनों, लेकिन हम समर्पित भाव से उनके पास में जाएंगे तब ये बात बनेगी, उसके बिना ये काम बनने वाला नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नामदेव जी के एक पुत्र था, उसका नाम था गोपाल, और बेटी थी एक, उसका नाम था गोपाली। ये बात आती है, बेटे का नाम गोपाल और बेटी का नाम गोपाली, भगवान के नाम के साथ में नाम जोड़ करके नाम दिया गया। अब वे नामदेव जी के साथ में बचपन से ही कीर्तन करने में मस्त रहते थे, कीर्तन करते, मस्त होकर के नाचते गाते, और वो गोपाली थी वो भी उनके साथ में कीर्तन करती नाचती आनंद मनाती। नामदेव बड़ी जब लड़की हो गई, नामदेव जी ने गांव में उसका विवाह कर दिया। ब्याह के बाद में भी वो पूर्व पहले तो ब्याह करके अभी तो अपने पैर में ही थी ना, तो भी उसने वो नृत्य गान संकीर्तन करना छोड़ा नहीं, कभी उन्हें बंद किए नहीं। ब्याह करने के बाद में तो स्वयं बदल ले अपनी क्रिया, परंतु उसने नहीं बदली अपनी, भगवान नाम कीर्तन करती गई। ससुराल बातों वालों को ये बात अच्छी नहीं लगी, ये बात अच्छी नहीं कि मोड़ियों के साथ में कहीं नाचा नगोदा करे हो, कहीं लड़की रो काम है, उनको अच्छा नहीं लगा। वे आए अपनी बहू को अपने घर ले गए, बहू को ले गए अपने घर ले जाएंगे, हम यहां नहीं रखेंगे, यहां रहेगी तब तक इनका साथ छोड़ेगी नहीं, इसलिए हम इसको अपने वहां पर ले जाते हैं। ले गए, बहू तो है तो ससुराल के घर जाएगी और कहां रहेगी। और ले गए से ले गए, फिर विचार किया कि यहां रहेगी तो ये छोकरी तो वहां गए बिना मानेगी नहीं, उसी गांव में की शादी है ना, तो वो गांव छोड़ करके पर गांव चले गए, दूसरे गांव चले चलो, वहां कोई आवे न कोई बात, घर के गांव में तो चाहे जब चली जाए चाहे जब आ जाए, पराए गांव चले जाओ तो वहां कुछ भी इनके जोर लगेगा नहीं। तो दूसरे वो गांव छोड़ करके दूसरे गांव में जाकर के बस गए। एक बार अब वो वहां बेचारी बैठी, खूब मन में कीर्तन के लिए उत्साहित हो रही है, लेकिन अब जोर नहीं लग रहा, जावन देते नहीं ससुराल वाले, जावे तो जाए कहां बेचारी। एक दिन नामदेव जी के यहां पर कोई उत्सव का दिन आया हरि कीर्तन के लिए, अब अपने पुत्री को बुलाने के लिए उन्होंने भेजा, गोपाली को लाने के लिए अपने बेटे को भेजा, लेकिन उन लोगों ने मना कर दिया, नहीं ये नहीं चलेगी आपके वहां पर। नामदेव जी ने सोचा ठीक है, कन्या तो अपने पति के घर पर ही रहना चाहिए, तो ठीक है कहीं तो जाने दो, नहीं सही अपने क्या जो अपन है वही करेंगे। लेकिन भगवान पंडरीक नाथ को गोपाली के नृत्य से जो आनंद आता था उसकी कमी पड़ी थी उनके पास में, उसका नृत्य और उसका कीर्तन भगवान पंडरीक नाथ को याद आने लगा, बार बार उसे सताने लगा। उधर गोपाली का जी भी है भगवान के दर्शन करने के लिए ललचा रहा है, तड़पण मच रही है कलेजे में, कब मैं जाऊं और कब पंडरीक भगवान के दर्शन पाऊं, और इस प्रकार वहां दर्शन करके कीर्तन करूं प्रभु के चरणों में और अपना जीवन सफल करूं। इस प्रकार दोनों, एक तरफ तो भगवान उसको याद कर रहे हैं गोपाली को, और गोपाली याद कर रही है भगवान को, दोनों आपस में एक दूसरे को याद कर करके दूर बैठे ऐसे वियोग में मतलब तड़प रहे हैं, वो इनके लिए वो इनके लिए। अब एक दिन की बात, ठाकुर जी से रहा नहीं गया, नामदेव जी के पुत्र का गोपाल का रूप बना लिया और गरुड़ जी को बना दिया घोड़ा, आप तो बन गए गोपाल, गरुड़ जी को बना दिया घोड़ा, घोड़े के ऊपर बैठ करके आप वहां चले गए गोपाली को लाने के लिए, उस गांव में चले गए। अब वहां पहुंचने पर इनकी किसी ने कोई आव भगत नहीं की, क्योंकि मालूम है इनका भाई आया है तो लेने के लिए आया है, तो अगर ये घर करेगा तो भेजना पड़ेगा, तो वो जाकर के फिर भी बोर्डों के साथ नाच गान करेगी, इसलिए इनसे बात ही मत करो। अरे बात नहीं करे तो नहीं करे, खाने पीने के लिए भी कुछ भी नहीं पूछा, रहने सहने के लिए कुछ बात की नहीं तो भाई अब ऐसी दशा हो गई, गरुड़ जी के लिए कोई इंतजाम नहीं, भूखे बैठे बेचारे, रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली, तो कहीं कोई सुनियार जगह में जाकर के रहना पड़ा। देखो ठाकुर जी भी बीती तो जोरदार है भाई, सुनी जगह में जाकर के ठाकुर जी को रहना पड़ा, गरुड़ जी को रहना पड़ा, गरुड़ जी कहे भूखा मरू महाराज, अब कहीं करा आज तो कोई खाने का इंतजाम ही नहीं है, भोजन का इंतजाम नहीं है, बड़ी जोर की भूख लगी है, कोई घास चारे का इंतजाम है, कोई दाने का इंतजाम है। अब बात ऐसी है प्रभु, ये संसार ऐसा है जो चमत्कार को नमस्कार करता है, ये सीधे साधे से काम नहीं चलेगा। तो चमत्कार को नमस्कार करता है, इसलिए आप भी कुछ चमत्कार करो, कौतुक दिखाओ, तो आपका मनोरथ पूरा हो जाएगा और अपना भी काम बन जाएगा और सब काम ठीक ठाक हो जाएगा। ये गर्ग जी ने सलाह दी भगवान को। अब लीला में प्रभु ने तत्काल एक बड़ी सुंदर पेटी तैयार की, मंजूषा पेटी बहुत सुंदर मखमल से मंडी हुई तैयार की। अब उसमें निकाल करके बहुत से दिव्य गहने और वस्त्र अपनी बहन गोपाली और उनके परिवार वालों के लिए भेजा, ये आपके लिए हमारे पिताजी ने गहने और कपड़े भेजे महाराज, बैठे दूसरी जगह सुनियार धर्मशाला में और गहने कपड़े उतार करके पेटी से खोल के उनके पास भेजे, ये सामग्री आपके लिए है। भले आपने हमें घर में स्थान नहीं दिया है, परंतु जो सामग्री लाए वो तो आपको दे दें। अब ऐसे गहने कपड़े बड़ी बेशकीमती ला के देखा और फिर था उनको देख करके, अरे रे रे रे, इतने कीमती गहने लेकर के आएगा, हमने इनका स्वागत नहीं किया, धोखा हो गया, गजब हो गया, चलो चलो जल्दी जाकर के उनको बधाव करके स्वागत करके घर में लेके आओ। अब तो दौड़ करके गए, ढोल थाली लेकर के गाजे बाजे के साथ में उनको स्वागत सत्कार करके घर में ले में आए। चमत्कार में नमस्कार है भाई, और किने पूछे भाई। अब तो स्वागत की बाढ़ आ गई, सबकी उनकी जय जयकार होने लगी। अब इस प्रकार क्या जितना आनंद होना चाहिए, खूब आनंद हुआ, खूब आनंद मनाया। घर वाले तुरंत लेवा ले गए अपने वहां पर, सबसे मिलना जुलना हुआ। गरुड़ जी जो अभी भूखे थे बेचारे, उनको भी अदाने का इंतजाम किया, वो भी तृप्त होकर के भोजन करते हैं। अब जो घास की नौबत थी वो भी मिट गई। अब उन्होंने आने का कारण पूछा, भगवान आप कैसे आए हो, क्या काम आए, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, हमारे वहां पर इसके बच्चे के पिताजी के यहाँ एक आनंद उत्सव हो रहा है ठाकुर जी के मंदिर का, तो उन्होंने अपने पुत्री को याद किया है, आप इसे हमारे साथ में भेज दीजिए, मैं उसे लेने के लिए आया हूँ। भाई आया बहन को लेने के लिए, मैं लेवाने के लिए आया हूँ। गोपाली के पास ससुर जी ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उन्हें विदा कर दिया, कहा देखे कोटे जाई तो कहीं न कहीं और ही गहना कपड़ा लेना आई, अट बैठी कहीं निहाल करी, क्योंकि बच्ची अपने पीर जाती है तो कुछ न कुछ लेके ही आती है, खाली हाथ नहीं आती, चाहे कुछ भी हो 5 रुपए लाओ बोले बल लेना आई। इसी प्रकार उसको बड़े प्रेम भाव से जल्दी प्रभात काल में विदाई दे दी, जाओ अपने पिताजी ने बुलाया है, उनका भी मनोरथ पूर्ण करो और बाद में फिर जल्दी यहाँ पर आ जाना, तुम्हारे बिना हमारा घर सूना हो जाता है, इसलिए हम तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस बुलाना चाहते हैं, और ज्यादा मत रुकना। ऐसा कह करके भाई के साथ में बहन को विदाई कर दी। ये लालच को लेकर के अब ठाकुर जी पालके में बैठा करके गोपाली को घर पर लेकर के आ गए। अब गोपाली पालके से उतर कर घर में गई, गोपाली तो उतर करके चली गई घर में और ठाकुर जी उतर करके चले गए मंदिर में अपने, उनका रास्ता ये, इनका रास्ता ये। अब मंदिर में पहुंच गए, नामदेव जी का पुत्र गोपाल बाजार गया हुआ था उस टाइम में, और जो ही घर में आया तो देखा बहन घर में खड़ी, अरे तुझे तो ससुराल वाले आने नहीं देते, तू कहां ही अचानक आ गई, किसके साथ आई, कौन लाया? अरे वो कहने लगी, तुम्हें तो आए लेने के लिए, मुझे पूछ रहे हो कौन आया? अरे तुम्हें तो मुझे लेके आए, अभी अभी मैं तुम्हारे साथ आई हूं बहन, तो अब कब आई है, कैसे आई? अब ये सारी बातें गोपाली ने कहा, गोपाल तू कैसी बैकी बैकी बातें कर रहा है रे पगले, अभी अभी तू लेकर के आया है। इतने में नामदेव जी भी भगवान का दर्शन करके घर पर आए, गोपाली के मुख से सारे उनके विचार सुने, नामदेव जी समझ गए कि सारे ठाकुर जी ने चमत्कार किया है। जो बेटी की मन में भावना थी, इसके मन में आने की भावना थी, तो परमात्मा ने इसके मनोरथ को सफल किया, क्योंकि वे चाहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी चिंतैसी, जिसकी जैसी भावना होती है वो परमात्मा को उसी मूर्ति के रूप में देख कर पहचाना करते। इस प्रकार यहाँ उन्हें ला करके अब खूब आनंद उत्सव के साथ में कितना उनका आनंद हुआ। हृदय में भगवान का दर्शन किया गोपाली ने, आंखों में प्रेम के आंसू की धारा बह चली है, खूब हृदय में अपार हर्ष है। खूब अपने नृत्य गान और कीर्तन के द्वारा प्रभु की सेवा में उसने लग करके अपना जीवन सफल बनाया। नामदेव जी के भक्ति का कौन क्या वर्णन कर सकता है बताए। उनकी दासी जो थी जन्नाबाई, जन्नाबाई की उनकी भक्ति भी बड़ी अनोखी कही जाती है। नामदेव जी के सत्संग से जन्नाबाई के ऊपर बहुत ही प्रेम का रंग चढ़ गया था। वो निरंतर जन्नाबाई नाम जप किया करती थी, निरंतर नाम जप किया करती थी जन्नाबाई। कोई भी काम करे तो रसना सु रटबो करे आठों पौर अभंग, रामदास उन संत का रामन छाड़े संगी कहते हैं ना, जो वो बात थी। हर समय उनके जीव से भगवान नाम का उच्चारण हो। देखो तो अब ये जो प्रसंग है एक बड़ी विचित्र प्रेरणा देता है। यदि हमारे मन में ये बात जग जाए तो बहुत विचित्र हमें लाभ की अनुभूति होगी। याद रखना, कभी कभी लोगों का जो गुस्सा ज्यादा आता है तो कई लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पतिदेव गुस्सा बहुत करते हैं, क्रोध ज्यादा करते हैं। तो उसके लिए तरीका ऐसा है कि रोटी बनाते टाइम में, रोटी तो बनाना तो आदमी तो बनाने से रहा है, वो तो औरत को ही बनाना पड़ेगा, महिलाएं को रोटी बनानी पड़ती है। तो जब भोजन बनाया जाता है तो भोजन बनाते टाइम में दूसरी बातें नहीं बोलते हुए भगवान का नाम उच्चारण करते हुए भोजन बनाया जाए। साग बनाओ चाहे रोटी बनाओ चाहे और कोई उस सामग्री तैयार करो, उस टाइम में भगवान का नाम स्मरण करते बोलते बोलते हो उच्चारण, जीभ से उच्चारण होना चाहिए, वो ध्वनि निकलनी चाहिए। वो ध्वनि जो हमारी तरंग निकलेगी वो उस भोजन सामग्री में मिलेगी जाकर के, और मन में ये भावना कि परमात्मा प्रभु इस भगवत प्रसादी से उनके अंतःकरण को निर्मल करें, ये भावना रख करके भोजन परोस करके आप लेके जाओ उनको भोजन कराओ, तो होते होते कुछ ही दिनों में उनमें परिवर्तन अपना आप आने लगेगा। देखेंगे कुछ ही दिनों में अपना आप क्रोध में कमी आती दिखेगी, क्योंकि आपके मौन में और आपके नाम स्मरण में वो शक्ति है कि भोजन के माध्यम से उनके अंतःकरण में पहुंच रहा है। वो अंतःकरण में पहुंच करके अंतःकरण में वो अपनी शक्ति वो किरणें वहां पर बिखेर देगा। वो बीजारोपण हो रहा है, धरती में बीज बोते हैं वो आगे बढ़ करके पेड़ पौधा बन जाता है। इसी प्रकार उस भोजन में वो जो हरि कीर्तन रूप आपने बीज बोया है वो ही बीज शरीर में जाकर के अंतःकरण में विकास कर देता है, और वहां पर जो बुरे संस्कार है उन बुरे संस्कारों को साफ कर देता है। काम में लेने की अनुभव में करने की बात है, इससे लाभ ले सकते हैं। खुद को भी लाभ होगा दूसरों को भी लाभ होगा, क्योंकि इतनी देर आप रोटी बनाते मौन तो रह सकते नहीं, कुछ न कुछ बातें करते हो, गप्पे मारते हो, किसी की भली बुरी करते हो, किसी की चुगली निंदा स्तुति करते हो, इनका परिणाम होता है पाप, और पाप का परिणाम नरक। तो उससे बचने का उपाय है भगवान नाम का स्मरण करो, तो आपका भी भला और परिवार का भला, सब का भला हो जाएगा, सब में अनुभव होने लगेगा। एक परिवार ने अनुभव की हुई बात बताई, महाराष्ट्र की बात है, वहां एक परिवार में एक बच्ची ने जो 6 साल में थी उसने कहा कि मैं कभी भगवान के मंदिर जाती हूँ दर्शन करने के लिए तो मेरे पतिदेव मुझे कभी साथ में विवाद कभी कभी भी वहां उधर जाते नहीं है। मैं बहुत कहती हूँ लेकिन मेरी बात मानते ही नहीं और जितना बन सके अपनी तरफ से मना करते हैं। वो खुद मना करते हैं और उसी प्रकार सासू भी है उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करती है। अब ऐसी परिस्थिति में क्या करें जिससे कि ये मतभेद दूर हो जाए तो यही उपाय उनको बताया कि तुम्हारे महीने भर में अंतर हो जाना चाहिए। ये बात बताई और 7 दिन उन्होंने 10 दिन बाद में टेलीफोन कर दिया कि हमारे तो 7 दिन में ही असर पड़ गया इसका दांत। अब वो खुद साथ में चलने लग गई जो मना करते थे खुद साथ में चलते हैं कि चलो मैं खुद दर्शन करूंगा। परिवर्तन आ गया। जो सासू मना करती थी मना करना बंद कर दिया कि बेटा जाओ जल्दी से दर्शन कराओ और फिर अपने घर का काम करो। ये इस प्रकार परिवर्तन हो सकता है लेकिन इसमें विश्वास रखकर के हम हृदय में धारण करें ये काम करें नियम से। केवल इसमें नियमबद्ध होकर के करने की जरूरत है और कोई बात नहीं सजन। नियमबद्ध होकर के इन बातों को अपने व्यवहार में काम में ले तो बहुत ही हमें प्रत्यक्ष में लाभ प्राप्त हो सकता है। यहां अब जन्ना बाई की जो बात बता रहे हैं उनके प्रेम की बात तो जन्ना बाई बैठ करके जब भी ठाकुर जी की सेवा के लिए चक्की चलाती थी भगवान खुद उनके साथ बैठ करके चक्की चलाने का काम करते थे क्योंकि वो भगवान नाम कीर्तन करती रहती थी तो उनको सुनने के लिए भगवान को भी साथ में बैठना पड़ेगा। हम जगेंगे तो भगवान को भी जगना पड़ेगा। हम जगेंगे तो उनको जगना पड़ेगा क्योंकि ये यथा माम प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजामि। मैं उनको उसी प्रकार से भजता हूं जो मुझे जिस रूप से भजते हैं मेरा साथ व्यवहार करते हैं। इस प्रकार जन्ना बाई की भक्ति की प्रशंसा सुनकर के एक बार महान भागवत संत कबीर दास जी महाराज काशी से पैदल चल करके पंडरपुर चले आए। पंडरपुर कबीर जी महाराज आए भक्ति की महिमा तो चलो चलते हैं चले आए। अब जन्ना बाई का पता लगाते हुए गए पता चला कि वो कंडे उपले लेने गई है। जन्ना बाई कहां गई है कि थेपड़े लाने गई है। सब थेपड़े आओ गोबर थेपे नहीं देखो थेपड़े लाने गई। अब पता लगाते लगाते वहां पहुंचे कबीर दास जी ने देखा जन्ना बाई एक औरत के साथ में झगड़ा कर रही है और झगड़ा भी किस बात के लिए केवल थेपड़े के लिए कि मारी थेपड़े तू क्यों लेगी हमारे कंडे तू क्यों ले गई इस बात के लिए झगड़ा हो रहा है। वो कह तेरे वे कंडे है क्या मेरे कहे है तेरे है ही नहीं। वो कह मेरे आपस में झगड़ा हो रहा है। अब कबीर दास जी महाराज ने जाकर के कंडे के विषय में झगड़े की बात देखी तो समझ में नहीं आया कि इसके सबके सब थेपड़े पड़ी एक जैसी दिखाई दे रही है वो कि मेरा ये मेरा। जन्ना बाई से कबीर जी ने कहा भाई तेरी महिमा तो भक्ति की मैंने बड़ी सुनी है लेकिन ये झगड़ा देख करके कुछ बात समझ में नहीं आई। इन छोटी सी चीजों के लिए फालतू का झगड़ा कर रही है इससे क्या है। चलो ये नहीं सी और सही लेकिन नहीं वो कि मेरी चीज ऐसी चीज साधारण चीज नहीं है। मेरे जो कंडे हैं साधारण नहीं है। मेरे प्रत्येक कंडे में भगवान का कीर्तन होता रहता है भगवान का नाम भरा हुआ है इसलिए ऐसी चीज क्यों हर किसी के पास चली जाए। हाँ भक्त के सेवा में लगे भगवान की सेवा में लगे तो वो चीज सार्थक है अन्यथा वो किसी काम की नहीं है। इसलिए मेरे कंडे में इन कंडों में से निकाल करके लेऊंगी। अरे क्या पता कि तेरे कंडे हैं आप कान के लगा के देख लो मैं बताती हूँ वो कंडा इसमें कीर्तन की आवाज आती है वो तो मेरा है बाकी का दूसरों का मुझे नहीं लेना। कबीर जी की ये भी गजब की बात है कंडे में आवाज। हाँ महाराज क्योंकि मैं गोबर थेपती टाइम में विट्ठल 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 का कीर्तन करती रहती हूँ विट्ठल जय जय विट्ठल 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 गोविंदा गोपाला विट्ठल जो उसी प्रकार वो कीर्तन करती रहती हूँ। वो आवाज इस कंडे में है, उठा करके देखा काम नाम का कान के लगाया जी कबीर जी ने, वास्तव में उनके अंदर वो कीर्तन की ध्वनि सुनाई देने लगी। दूसरा उठाया तो जयराम जी उसमें कुछ आवाज नहीं, जो अपने अपने कंडे थे निकाल करके इनमें देख लीजिए ये मेरे हैं ये मेरे नहीं है। उनके इस प्रकार निर्णय की बात अपने अपने ध्वनि कीर्तन से रहित जो कंडे उनको छोड़ दिया और अपने कंडे थे वो वहां से लेकर के रवाना हो गई। कबीर जी महाराज ने भी जन्नाबाई को प्रणाम किया, धन्य हो देवी धन्य है जन्नाबाई जिनके स्पर्श मात्र से जड़ में भी चेतनता आ जाती है। जड़ में भी चेतन अवस्था है, सोचो कितनी विलक्षणता है आपके इस कीर्तन में। ये सब नामदेव जी की भक्ति का प्रभाव है, उन्हीं के प्रभाव से आज तुम यहाँ पर इस प्रकार परम भक्ति की पराकाष्ठा में संसार का काम करते हुए भी ऐसे उच्च पद पर पहुंच चुकी हो, धन्य भाग है। मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत ही संतुष्ट हूँ, ऐसे भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करते हुए कबीर जी महाराज वहां से आगे चले गए। इसी प्रकार नामदेव जी के सत्संग से जाति के तो चमार जो चोखा मेला जी थे उनकी भी भगवान के नाम में बड़ी भारी निष्ठा थी, वे भी निरंतर राम नाम का रटन किया करते थे। उनके राम रोम कूप में राम राम रमा करता था हमेशा, हर समय नाम ध्वनि चलती, काम करो धंधा करो घर में बाहर उठते बैठते सोते जागते कभी भी उठत ही बैठत कहे जागत ही कह सोय हरिया जागत राम जी कबूक प्रगट होय। किसी भी समय जो भगवान का नाम लेता है तो भगवान उनको प्रकट होते ही है, ये निश्चित बात है। ये मजदूरी का काम करने वाले थे चौका मेला, तो अब निरंतर भगवान के रट करने में एक बार की बात है, एक मकान की दीवार बनाई जा रही थी, किसी कारणवशात वे काम पर गए हुए थे, जब दीवार के पास काम धंधे में लगे थे अचानक दीवार नीचे गिर पड़ी और दीवार के नीचे चोखा मेला दब गए, और भी कई मजदूर थे वो भी उसके नीचे दब गए। बड़ी हवेली थी, अब पड़े दबे तो ऐसे दबे कि आजकल कोई सामान ये कई तरह के उठाने के भारी कोई सामान है जो बुलडोजर वगैरह होंगे, लेकिन उस समय कोई थे नहीं, भारी सामान में नीचे दब गए। कई दिन हो गए, उनको निकालने की चेष्टा की, कई दिन बीत गए। अब होते होते दिनों दिन लगे माल निकाला तो अंदर कई लोगों की हड्डियां जो थी सब सड़सड़ा करके शरीर खत्म हो चुके थे, केवल हड्डियां बाकी बची थी। अब वहां भाई चोखा मेला की हड्डी कौन सी है ये कोई पहचान में, चेहरा हो तो पहचान में आ जाए लेकिन हड्डी वगैरह पहचान में नहीं आती है। नामदेव जी ने कहा उसकी पहचान मेरे पास है, मैं बताता हूं। चोखा मेला की हड्डियों में भगवान के नाम की ध्वनि आती रहती है, ये परीक्षित प्रयोग है, एक एक करके हड्डियां लेकर के आओ, मैं सबका भी परिचय बताऊंगा। अब लेकर के आए हड्डियों के टुकड़े, चयन किया तो वास्तव में जो चोखा मेला के शरीर की हड्डियां थी उनमें विट्ठलनाथ की आवाज आ गई। नामदेव जी ने सबको कहा देख लीजिए इसमें आवाज आती है कि नहीं आती है, खुद ने स्वयं उन्होंने सुना दूसरों को सुनाया, सचमुच ही चोखा मेला की इस प्रकार जय विट्ठल जय विट्ठल विट्ठल बोल इस प्रकार वो बड़ी गंभीर ध्वनि, क्योंकि वो निरंतर उनके रग रग में बसी हुई थी, वो आवाज आ रही थी। इस तरह उनके संग में जो भी आया वो सदा ही भगवत भक्ति में सराबोर हो गया। नामदेव जी के आखिरी दिनों में जब उनके प्रभु के चरणों में जाने की इच्छा हुई, एक दिन पंडरीकनाथ भगवान के सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके बोले प्रभु अब तो नामा को अपने पौड़ के ऊपर खड़ा कर दो, स्थान दे दो, मतलब अपने द्वार पर ले लो इसको, बहुत भटक चुका दुनिया में। इसके बाद में नामदेव जी ने उसी समय उपस्थित सभी संत और वैष्णव संत जो वहां पर लोग खड़े थे उनको हाथ जोड़ करके कहा आप लोग मुझको भगवान के पोले से हटाना मत, मेरी आपसे विनती है, मतलब मैं शरीर छोड़ रहा हूं तो मुझे यहां से हटाना मत, मुझे तो यहीं रहने देना। अब जिससे कि विट्ठलनाथ भगवान के मैं दर्शन करने वाले जो कोई भी भक्त लोग यहां पर आएंगे उनके चरणों की धूली मुझे मिलती रहेगी, कि सीढ़ी पर रहूं तो सीढ़ी पर ही होकर के लोग आ चलेंगे तो उनकी चरण धूली मुझे मिलती रहेगी, प्राप्त होती रहेगी। इसलिए मेरी चाहना है कि मुझे यहां से और किसी जगह मत ले जाना, सबसे नीचे की जो सीढ़ी थी उसके ऊपर आप खड़े होकर के पुनः श्री पांडुरंग भगवान को प्रणाम किया, सभी संतों को बारंबार प्रणाम करके उसी जगह बैठ गए और पांडुरंग श्री विट्ठल कहते हुए सदा सदा के लिए भगवान के चरणों में पहुंच गए। नाम देजन श्री फिर क्या कर, भक्तों को ऐसे भक्त का वियोग बड़ा दुखदायी लगा, सब ने बड़ा भारी कर्ण क्रंदन किया, भक्त का वियोग कैसे सहन हो, परंतु अंत में उसी सीढ़ी के नीचे नामदेव जी की समाधि दी गई, अभी भी वही समाधि स्थल है उनका, भगवान का जो श्री मंदिर है, मंदिर के आग्र सीढ़ी के पास में ही नामदेव जी का जो स्थान बनाया गया। अब भी वहां जो दर्शन करने के लिए जाते हैं उस सीढ़ी को प्रणाम करते हैं और उस पर पैर दिए बिना ही लोग बाग आगे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए बढ़ते हैं, पहले सेवक को प्रणाम बाद में स्वामी को प्रणाम। अब ऐसे भगवान के प्यारे जो भक्त हैं उन भक्तों की महिमा अपरंपार, ऐसे भक्तों को बार बार वंदन करते हुए हम अपना जीवन भी परम धन्य बना सकते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। अभी प्रसंग नामदेव जी का पूर्ण हो चुका है, तो अभी का प्रसंग थोड़ा ये करके फिर आगे के प्रसंग में नामदेव जी के संबंध की बात एक है। दुज एक नंददास नाम अनुज आयोजन सेवा करे, जप मंत्र रमता राम निश्चय गुरु कारण सब श्रे, बड़ी महिमा जगत पूज्यक विप्रधिक चलावही, और जन से हेतो खेत कर्षण मृतक गौ नखावही, कर्त हासी धेनु मार्ग पात की वर्षा दियो, और उपज करुणा कहत जन सुख श्याय की देवादियो, दिग्जाय बचरी गिरा उचरी जीव उनके सदरी भई, हुई किसान है दुष्ट भाग्य कहने लागे जन यही, नमो गत उद्धार देवा भगत सेवा सब करी, कृत कलु काल माई दास महिमा विस्तरी। नंददास जी जो एक भगवान की प्यारी भक्ति करने वाले उत्तर प्रदेश के एक ब्राह्मण थे, वह ब्राह्मण देवता थे, बरेली के पास में एक हवेली नाम का गांव है, वहां के एक ब्राह्मण थे नंददास जी नाम के, भगवान की प्यारी भक्ति करने वाले और हमेशा उनके यहां पर संतों की भीड़ लगी रहती थी, हमेशा वे संत सेवा किया करते थे, इसलिए संत समाज उनके आते जाते रहते थे। अब प्राय करके संसार में होता है कि भाई जाति वाला आपस में वंश रो वंश काटे, तो एक दूसरा ब्राह्मण उनसे हमेशा द्वेष रखता था, जाति भाई था लेकिन उनसे हमेशा बैर रखे। अब उनसे द्वेष रखने वाला उसने एक बार क्या हुआ कि उसका भी खेती थी, खेत में वो अपने धान की रखवाली करने के लिए वो गया हुआ था, वहां उस गाय कोई चरने के लिए आए गई उसके खेत में, उसने लेकर के अपनी लाठी चलाई जोर से, लाठी की चोट गाय के ऐसी लगी कनपटी में लगते ही गाय वहां पर मर गई। अब जो वो गाय मर गई वो घबरा गया, करे अब मेरे हाथ से गौ हत्या हो गई, पर अभी कोई देखने वाला है नहीं, किसी को पता नहीं लगे, उससे पहले मैं कोई युक्ति करके ये मरी हुई गाय अपने खेत से हटा करके मेरे बगल में ही इसका खेत है नंददास का, इसके खेत में पटक दो और उसके खेत में पटक करके उसको बदनाम कर दू। नंददास ने गाय मार दी, नंददास ने गाय मार दी, ओ अल्लाह मचाऊंगा तो लोग बाग मेरी बात मान लेंगे क्योंकि मैंने देखी है, मैं गवाह दे दूंगा कि मैंने देखी गाय इसने मारी है। इस प्रकार उसने ये काम कर लिया। संत अब ऐसे उनके पास में बताया है कि देखो काक कुक्कुट कायस्था स्वजाति परिपोषका स्वजाति परिहंतार श्वान सिंह गज द्विजा। कौवा कुक्कुट मुर्गा और कायस्थ ये लोग अपने जाति के पोषक होते, उनकी मदद करने वाले होता है, परंतु कुत्ता सिंह हाथी और ब्राह्मण ये अपनी जाति को नाश करने वाले हुआ करते हैं, अपने जाति के नाशक होता करते हैं, उनका स्वभाव ऐसा होता है। इसलिए उसके मन में ऐसा बात आया कि अपना जो पाप है उसके बोझ माथे पर डाल दूं ताकि लोग बाग उसी की दुर्य दुर्य करेंगे और उसी को न्याद बारे करेंगे, फिर उसका हम जितना करेंगे अपमान कराएंगे। ऐसी उसने मन में विचार कर ली। वो बच्चिया नंददास जी के खेत में डाल दी और वहां जो भी सामने मिला उसे गाली देने लगा और नंददास ने देखो आज गौ हत्या कर डाली है, गाय की बछड़ी को मार दिया है, उसने ऐसे कर दिया, ऐसा हिंसक है, ऐसा दुराचारी, ऊपर से तो साधु बना हुआ है लेकिन अंदर से कितना कपटी है, देखो देखो संतों को तो भोजन कराता है और इधर गौ हत्या किए जा रहा है, इसको बिल्कुल शर्म नहीं आती है। इस प्रकार लोगों के बीच में हो अल्लाह मचाता मचाता चल रहा है, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। नंददास जी के पास में लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, आने वाले संतों की भीड़ लगी थी, अब उनके बीच में जाकर के हल्ला करने लगा, अरे जो कोई भी साधु महात्मा आने वाले थे ना उनके पास में जाकर के तुम भी साधु हो, अरे गौ हत्यारे के हाथ की रोटी खाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वहां क्यों जाया करते हो और यहाँ पर रखते हो रहते हो तुम लोग। जो हिंदू होगा वो गाय की कभी भी हत्या नहीं करेगा, ये तो जो गौ हत्यारे लोग होते हैं उन लोगों का ही ये काम है, बड़ा भारी अपराध है। नंददास जी को जब ये बात मालूम पड़ी तो संतों को साथ में लेकर के अपने खेत पर गए कि क्या बोल रहा है, मैंने कभी गौ हत्या की नहीं है, ये कह रहा कि गाय हत्या हुई है, तेरे खेत में पड़ी हुई गई है, वो कह मैं देख कह रहा हूं बता रहा हूं चल। अरे चोर कभी सच्चा थोड़े ही बोलता है, वहां गाय मार करके अब यहां सच्चा बनना चाहता है, चल देख। अब संतों को और कुछ गांव वालों को और मुखिया लोगों को और पंच लोगों को साथ में लिया, चलो आप सब लोग चल करके देखो वहां गाय मिलेगी मरी मिलेगी नहीं मिले। अब इस प्रकार सब लोग उनके साथ में वहां से उसके खेत के ऊपर चले गए खेत। अब वहां खेत के ऊपर पहुंचे तो वहां देखा वास्तव में गाय मरी हुई है, बच्चे अब मरी पड़ी बच्चिया, उस मरी हुई बच्चिया को देखा तो नंददास जी को बड़ा विचार आया, ओ मेरा नाम लिया इसने, वास्तव में मेरी मारी हुई तो है नहीं, क्यों खुद से तो कोई चोरी छिपी थोड़ी है, अपने खेत से मच्छिया को घसीट करके और मेरे खेत में इसने डाला है, अब यहां पर इसको लोगों में झूठ मूठ मुझे बदनाम करना चाहता है, बहुत अभागा है, मतलब ऐसा है कि देखो गौ की हत्या कितनी दोष मानी गई है हिंदू धर्म में शास्त्रों में, गाय की बड़ी भारी महिमा है, मात्र सर्वभूता नाम गाव है सर्व सुख प्रदा, गायें संपूर्ण सब प्रकार के सुख देने वाली है, संपूर्ण प्राणियों की माता है, इसलिए सदा इसकी सेवा करो, गावे स्वर्गस्य सोपानम गावे स्वर्गे भी पूजिता गावे काम दो देव्यो नान्यत किंचित परम स्मृत, गाये है स्वर्ग में जाने के लिए सोपान का काम करती है, स्वर्ग में भी गायों की पूजा होती है, गाय कामधेनु के समान होकर के सबके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती है, इनसे बढ़कर के संसार में धर्म की कोई वृद्धि करने वाला है ही नहीं। ऐसे उन गायों की महत्ता को जानते हुए भी इस ब्राह्मण ने होकर के इस प्रकार हत्या की है। यो वही ताड़ेते युष्ट्या धैनु मृतो विमूढ़ दी यमराज से नगरे से आती कर वर्जिता। बताया है कि जो प्राणी यहाँ गाय को अपने लाठी से मारता है वो मर करके मूर्ख आदमी यमराज के नगर में जाता है, वहाँ उसके हाथों को बांध करके पिटाई की जाती है। योवी गाम प्रतिशोध्य चरंतिम स्वम तृणंदर तस्य पूर्वे च पितर कंपनते पतनोन्मुखा। जो मनुष्य अपने ही खेत में चरती हुई गाय को निवारण करता रोकता है उसके पितृलोक भयभीत होते हैं, नरक में गिर जाते हैं। ऐसे गाय को मारने वाला है महान अभागी आदमी और इस तरह ऐसा पापाचार करने वाला हमारे जाति में रहने लायक नहीं है, इसको जाति से बहिष्कार कर देना चाहिए, आप लोग इसका समर्थन करो। अब झूठो भेजो कोई ज्यादा बोले सा, सत्य आदमी ज्यादा क्या बोले। सत्य की थी साक्षी केवल परमात्मा बिना बोल करके देने वाले हैं, दे सकते हैं। वो बोलता गया नाम नामा नहीं, ये जो कुछ देर में नंददास जी प्रभु को चिंतन करके प्रभु का ध्यान करके बच्चिया के पास में गए, गाय के पास में गए और उसके पास में बैठ करके वे हरिनाम का स्मरण करने लगे और जो ही उसके कान में जाकर के भगवान का नाम सुनाया, तीन बार हरिनाम सुनाया, नाम सुनते ही वो गाय एकदम जीवित हो गई, जीवित होकर जागृत होकर के बैठ गई और नंददास जी के आसपास चारों तरफ उनकी परिक्रमा देने लगी। नंददास जी ने गौ माता को प्रणाम किया, संत महात्माओं को प्रणाम किया। अब संतों ने कहा तू कहता इन्हें मारी है, बोल इन्होंने मारी है जिलाई है, मारने वाला तो तू है और दूसरों को बदनाम करके उन्हें कलंकित करना चाहता है। सच्चा ये अगर मारने वाला होता तो इससे कैसे गौ जीवित होती। इस प्रकार की उसकी दशा देखी तो द्वेष करने वाला वो खुद भी रो करके उनके चरणों में गिर पड़ा, महाराज वास्तविक तो दोषी मैं हूं, मैंने अपना दोष आपके से मरने के लिए सारी युक्ति की, परंतु वास्तव में आप सत्पुरुष हो, मैंने जो भी अपराध किया आप महात्मा कृपा करके मेरे अपराध को क्षमा करो, आपके चरणों में मैं बारम्बार वंदन करता हूं। इस प्रकार उसने क्षमा याचना कर, दूसरे भी जो गांव वाले लोग बाग थे उन्होंने भी ये स्थिति देखी, फिर वो घसीट करके लाया, वो जगह भी देखी, सारी बात मान करके ये सारा दंड आज से तुम्हें दिया जाएगा जो तुमने इस प्रकार निरर्थक ऐसे भक्त को बदनाम किया है। संतों ने कहा भाई कोई बात नहीं, मैंने मारा तो भी भगवान ने जिंदा कर दिया, चलो कोई बात नहीं, मरी हुई तो नहीं है ना, मृतक नहीं है, जीवित हो गई, बस ये जीवनदान परमात्मा का, अपने गाय जो खेती में मान लो गाय आई है तो उसको चरते हो बाहर हटाना एक खेती किसान का काम है, इसलिए अपने खेत से इसने बाहर निकाल दिया, जिंदी मान लो, आप मरी हुई मानते ही क्यों, अभी जीवित है आप उसको जीवित मानो, किसी प्रकार से इन्हें दंड मत दीजिए, आप लोग तो प्रेम से हरि कीर्तन करो, भगवान का नाम स्मरण करो और इस प्रकार से जो सत्कार्य है उन सत्कार्यों में ही सदा लगे रहने की नित्य प्रति प्रेरणा प्रदान करते रहो। इस तरह उनसे भगवान से प्रार्थना करते हुए ये सारी बातें बताई, सुनकर के सभी लोग आश्चर्यचकित हुए हैं, सभी उन नंददास जी को प्रणाम करते हैं वह, और उनके हृदय में श्रद्धा पैदा हो गई और सब लोग अपने अपने घरों में लौट गए। इस प्रकार ये वे जो इनके विषय में एक बार गाय जीवाई, गाय को जीवित किया उन्होंने, स्वयं नामदेव जी ने भी गाय को जीवित किया और इधर इसने प्रेम भाव से मृत नंददास जी ने भी गाय को जीवित किया। ऐसे भगवान के चरणों में भक्ति भाव पैदा करने वाले भक्तों के चरित्र तो हर प्रकार से हम भक्तों की मदद करते हैं। भगवान ये बात बताना चाहते हैं, जो उनके बनते हैं उनको सदा आनंद की प्राप्ति होती है। समय से थोड़ा मध्याह्न काल का विश्राम कर लेते हैं, लगभग आधा घंटे का विश्राम, उसके बाद में आगे का प्रसंग अपन दूसरे भक्तों के माध्यम से चालू करेंगे। राम राम मुख राम कृष्ण कीजिए रे,
मुख राम कृष्ण कीजिए रे,
सीताराम ने भजन लावो लीजिए रे,
सीताराम ने भजन लावो लीजिए रे,
मुख
राम कृष्ण कीजिए रे,
मुख राम कृष्ण कीजिए रे,
सीताराम ने भजन लावो लीजिए रे,
राधे राम ने भजन लावो लीजिए रे,
मुख राम कृष्ण कीजिए रे,
मुख राम कृष्ण कीजिए रे,
सीताराम ने भजन लावो लीजिए रे,
हो राधे श्याम ने भजन लावो लीजिए,
मुख राम कृष्ण कीजिए रे,
मुख राम कृष्ण कीजिए रे,
सीताराम ने भजन लावो लीजिए रे,
राधे श्याम ने भजन लावो लीजिए रे,
सीताराम ने भजन लावो लीजिए रे,
राधे श्याम ने भजन लावो लीजिए।
बोले आनंद कंद भगवान की, सतगुरुदेव की जय। लगभग 2:45 बजे तक मध्यम विश्राम। बोलो राम जी महाराज की। हम उड़ जाओ
Rama,
Rama, Rama, Rama, Rama.
काल के बंधु विघ्नहरण मंगल कर्ण रामदासयानंद। खैरापुर में वासुदास जन्मत निज भगता बाल हित जड़ प्रकट भगत बिचल बिरज रखता गोचराय पुथाय माय हिल मिल गोविंदा भगत भाव जन चाव नर नारी हरिबंधा। कण कणों को मन मन भय करता करे से क्यों नहीं जद रामा हरि प्रीत बस उलट देख आपन मही। बिरखा रुद पर सिद्ध कृषि भावन जन जावन मगा साध दर्शन क्षुदा परसन घरे पावन। हाजर होए सहद समर्पण उत्तम एई हरिजन लो प्रसाद बीज श्रद्धा कर दे। मन आनंद भूवो भलो उदयकार फल अतुलत विश्वास राग हर जो तद धनो कहत नहीं फलकित। कर्ण ने पहलीनी प्रथम पछे निकासी ओर सफल साग ऐसे फली ब्रिंचन आवे जोड़। अकर्ण कर्ण ऐसी तब कीनी गुरु भक्ता गुरु सबदा चीनी निपनी खेती इसी नवीनी तुम्बा गौ गिरी ऋषिनी। बेजल दिपजा और अपारा जलपातर पर पूर्ण सारा भगत बिचल बिरद परंपारा देवल फेरो नामे सारा। अब नंददास जी के बाद में इस प्रसंग में धन्ना भगत जी के विषय में बात बता रहे महाराज। धन्ना भगत खेती नहीं पाए पात्र माई बिना बाई समय धनो धनाई प्रीत बाई। इस प्रकार वो धन्ना जी के विषय में इन धन्ना जी का जन्म बताते हैं। टोंक राजस्थान में ही है, टोंक जिले में गांव धुवन जो कि खेरापुर के नाम से भी प्रसिद्ध है। खेरापुर अपना खेड़ापा है, वो खेड़ापुर है। जन्म से ही वे इनकी जाति जाट भी थी और पिताजी इनके पन्ना जी थे। माताजी का नाम रेखाबाई इनका नाम प्रसिद्ध है। ऐसे ही महात्मा धन्ना जी बाल्यकाल से ही जन्म से ही भगवान की प्यारी भक्ति में तल्लीन हो गए थे। भक्ति के संसार जन्मनाथ प्रवेश से होता है कि पूर्व जन्म के संस्कार भी इस जन्म में आगे भगत बीज पलटे नहीं। जो जुग जाए अनंत ऊंच नीच घर अवतरे रहे संत को। संत तो संत श्रेणी के रूप में जहां कहीं भी उनका जन्म हो जाता है आते जाते हैं, लेकिन भक्ति के संस्कार उनके कम नहीं पड़ते हैं। तो इनमें धन्ना जी में इस प्रकार भगवान की भक्ति के बड़े अतुल संस्कार थे। अब इनका चरित्र में वर्णन आता है, खेती बोने के लिए एक बार बीज और बैल इत्यादि लेकर के आप खेत पर जा रहे थे। खेत पर जा रहे थे, मार्ग में इनको संत मिल गए। अब इन्होंने संतों को बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक दंडवत करके प्रणाम किया। संत कहने लगे, भगत जी हम लोग तो आपके घर आ रहे हैं, आप इधर जा रहे हो, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो? धन्ना जी कहने लगे, महाराज आज तो मैं तो खेती में खेत बोने के लिए जा रहा हूँ, आप घर पर पधारिए, वहां पर जो लक्ष्मी है वो आपको भिक्षा भोजन प्रसाद कराएगी। मैं कि आज हड़ोतिया का दिन है, बरसात हो गई है, मौसम है, तो बरसात खेती के लिए जा रहा हूं। संतों ने कहा, भाई जब तुम घर पर नहीं हो तो हम लोग घर जाके क्या करेंगे? हम तो जहाँ पर भगत है वहीं पर हम हैं। यदि तुम हमें कुछ देना चाहते हो तो यहीं पर देना दे दो, आज यहीं पर हम तुम्हारे साथ बैठ करके प्रसाद पाएंगे, हमें इसी में आनंद आता है। और अच्छी बात है महाराज, तो ठीक है, और क्या चाहिए। जो बीज खेती में बोने लायक लाया था वही बीज उसने अपने संतों को समर्पण कर दिया। जो हाजिर हो सो हद, ये बात बताई जाती है, जो अपास्ट में हाजिर हो वो चीज समर्पित कर देनी चाहिए। इसी में परमात्मा राजी है, जो ज्यादा कमती अच्छी बुरी भगवान नहीं देखते, जो चीज है उसमें अगर कोई त्रुटि रखी जाती है तो भगवान भले दोष माने, लेकिन जब समर्पण है उसको समर्पण कर दिया तो भगवान कोई दोष नहीं मानते। अब ठाकबाट से संतों ने जो धन्ना के दिए प्रसाद का प्रसाद बनाया, ठाकुर जी के भोग लगाया और बारंबार संतों ने आशीर्वाद दिया, भाई भगवान कृपा करे तुम्हारा मनोरथ सदा सफल हो। अब बाद में धन्ना जी खेती में चले गए, खेत में अब उनका जो काम करने वाला आदमी भी साथ में था, उसको कह दिया भैया खेत में हल जोत दो। अरे बाबा जोत तो देंगे लेकिन अनाज कहाँ है, अनाज हमने पहले बो दिया है, पहले अनाज बो दिया, संतों के मुंह में बो दिया, संतों के मुख बीज बोया, खेती में अनाज नहीं बजाया, संतों के मुख में बीज बो दिया है, अब हल चला दो। हल चलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब घर वालों को मालूम पड़ जाएगी कि हल किया ही नहीं तेरे, मान लो बीज उगा नहीं, कह देंगे बोया तो था लेकिन उगा नहीं, खेती में नमी कम थी इसलिए बराबर फसल उगी नहीं, बीज बिगड़ गया ये तो कह देंगे, लेकिन हल चलाए नहीं तो फिर क्या कहेंगे। इसलिए माता पिता के डर से हल चला दिया, खाली उम्र काट दिया, कोई बीज नहीं, एक भी बीज तो पूरा का पूरा संतों को दे दवा दिया, पूरा ठिकाने लगा दिया। लोग बाग देखने वाले भी आश्चर्य करते नहीं, ये क्या तमाशा कर रहा है, क्यों खोटी वह है, टाइम खराब करे है, बलदाने तंग करे है, आप ही परेशान वह है, कोई मतलब नहीं बात नहीं, अरे नहीं है तो दूसरी बार बीज जाके ले आवे कहीं आगो, लेकिन दूसरी बार लावे जितना सामर्थ्य कहा, गरीब किसान लोगों के पास मत ऐसी बात एक बार बड़ी मुश्किल से मिलती थी, दोबारा कहां मिलने वाली। इस प्रकार उसने खेत में अपना हल चला चलो करके पूरा काम कर लिया, शाम को घर पहुंच गया, लोगों ने तो कह दिया आज लोगों को ठगने के लिए, घर वालों को ठगने के लिए खाली हल बोया है, कोई बीज एक भी नहीं डाला है, हम लोग ने देखा है इसलिए, और हम लोगों ने तो खेती बात ही बीज बो दिया और इसने कुछ नहीं बोया है, इसलिए सब लोग तुम बिल्कुल इसके बहकावे में आकर के इसके भरोसे मत रहना, और कोई बीज बोने का इंतजाम कर देना। उसने माता पिता ने पूछा क्यों धन्ना क्या किया था, नहीं नहीं मैंने बीज बो दिया माता जी, बीज बो दिया, देखना आप कितनी बढ़िया फसल पैदा होगी, आप देखना बहुत बढ़िया फसल होगी, ये कह रहे हैं, ये तो ऐसे ईर्ष्या में कहते हैं कि मैंने फसल बढ़िया बोया है, अच्छा बीज बोया है, अच्छी जगह बोया है, इसलिए बहुत बढ़िया फसल पैदा होने वाली है, आप लोग चिंता मत करो धीरज रखो। तीन दिन बाद में फसल खेती में दिखने लगी, सब लोगों की दिखे उससे दुगनी फसल इनके खेती में जल्दी उगती हुई दिखाई देने लगी, पूरे के पूरे खेत में, और तो और चारों तरफ ओढ़ निकालते हैं, चारों तरफ उस ओढ़ में उसने तुम्बा का बीज बो दिया, तुम्बा का बीज संतान हो रहा था, पानी भी पी संत हो रहा था, गेहूं तो बो दिया खेत में वो की जगह, लेकिन तुम्बा तो संतान खवावे की कर देना, तुम्बा बीज वे चारों तरफ ओढ़ में खेती के चारों तरफ किनार 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 पर वो बेल बढ़ जाएगी और तुम्बे संतों को दे देंगे, उनकी सेवा में काम आएगा जल पात्र, तुमड़ी में तेरे गुण, तुमड़ी में तेरे गुण है भाई, पर गुरा भी न जाने कौन, तुम भी तीरे न तिरावे, तुम भी ठंडो पानी पावे। और वो तो मुंडो फुला पूरा नाराज हो गयो, पता तो लागे कर दी मन रोटी नहीं खानी। मैं नहीं कहूं आज राम जी उसे मनावे क्यों नहीं खावे, नहीं नहीं कहूं, कह दिन मारी ग्यारह से, मारी ग्यारह से नहीं कहूं, नहीं खाऊ दूजा। अरे मैं सब खावा तू भूखो रही महाराज जो को कही मैं को नहीं खाऊ, इतना दिन भूखो कितना दिन रही थे अकेला हमारा हेमसिंह जी ने किया, मैं कभी थाने कहो आज एक दिन और ही सही, अब थाने पैर घड़ी घड़ी कहने बात बुलाऊ जो मन रोज तो भूखा मारो दूजा ने बुला बंद तो थपा दो और घराड़ा ने मैंने भूखा ही मारो हम थाने बुला ही को नहीं करे। राम जी को कह तो माने नहीं, सीता जी आखिर में कही मारो हाथ फिरे जी ने कुछ बात देखो माँ जान माता हाथ फेर पर प्यार सुन कह बेटा इतना दिन तू रोस रही बनाई थारे हाथ रोसोई मैं जी मी आज मैं बनाई है तो एक कहो तुम सने मारा हाथ तो लेनो ही पड़ी हाथ जो तो चाहे कितो ही बोले हो आज तो एक कहो थे लेनो ही पड़ी मारो प्यार भरियो हाथ जो माथे फिरियो ऐसी गहरी भूख लागी चटपट मारे हाथ सु वो कहो है नी मुंडा रमाने ले ले वे। और जो सीता जी आपने हाथों ग्रास्तियों ने दियो है भाई ने वो जो मुंडर मायने धरियो माए पेट में गियो जाता ही उन्हें दिव्य प्रकाश पैदा हो गयो चारों तरफ अखंड अखंड आनंद आनंद वर्षने ला गया सबका विचित्र सुख दिखने ला गया साक्षात शंकर भगवान वाणी सेना अर्जुन राम जी सीता जी लक्ष्मण जी हनुमान जी और मैं आने सामने कहीं कहीं बोल के बात याद आकर के रोन ला गयो रोन ला प्रभु के चरणार मायने पड़ गयो अब साक्षात ब्रह्म के रूप में वे दिखाई देने लगे। अभी तक तो साधारण ठाकुर जी मान तो लेकिन आज साक्षात ब्रह्म परमात्मा मान करके बड़ी आनंद की लहर छा गई गदगद हो गयो एक ग्रास जन्म जन्म की भूख मिट गई उन्हीं रामा की जो ढाई से रोज भोजन करने वाला आज जन्म जन्म की भूख मिटी। आज उन्हीं टेम उन्हें एक बात जची वो कहवे ठाकुर जी हाँ बोल भाई कहीं कह मैं एक बात बताऊं मैं एक जरूरी काम याद आएगा जो को मैं थोड़ा जान पाचो आऊं जिते थे अटे बैठा नहीं जो बीचे गया पड़ा था ना डायरी सोगन है अडेरी सोगन है जो गया तो मैं जान पाच आऊं जिते अटे बैठो रहो पड़ेला क्यों कह प्राण बताओ दौड़ लगाई चांटी लगाई कुटिया माता जी ने बाबा जी आश्रम बट दौड़ दियो दौड़तो कोला टांग लिया ना हाम तो भागो जा रही हो ठेठ दूर से आवाज लगावे गुरुजी देखकर कहीं बात है हम तो तेज घणो भागे कहीं लड़े झगड़ो तो नहीं हुई कठी कटे मारपीट नहीं होगी है कि तो बेढंगे किकर दौड़ तो आ रही है कहीं कारण है यूं बात मन में कई संकल्प विकल्प करता बारे निकलिया और वो कने आन दरवाजा कने के गुरुजी बोल कई बात है भाई मने आप बताओ सर अटे ठाकुर जी सेवा करता कितना वर्ष हुआ। अरे क्यों तुमने कहीं ना कहीं मतलब मैं पूछू जी की बात बताओ कितना वर्ष हुआ 40 वर्ष हो गया भाई मनाठे सेवा करता ने 40 वर्ष मना सेवा करता ने हो गया थाने ठाकुर जी दर्शन हुआ ठाकुर जी दर्शन हुआ। अरे रोज नहीं करूं अरे रोज ना तो मूर्ति ने दर्शन करो ठाकुर जी ने खुदरा दर्शन या नहीं बताओ मने। अरे ऐज ठाकुर जी दूजा के नहीं नहीं ए तो मूर्ति ठाकुर जी की खुद ठाकुर जी का दर्शन या नहीं भाई दूजा तो मैंने कोई दर्शन को नहीं आ तो चलो तुम्हारे हाथ में करूं थाने ठाकुर जी रहा थाने ठुकरा नहीं रहा और मारे ठाकुर जी हैंगर बिड़ाई करा दे चलो हमारे साथ गुरु जी हाथ पकड़ पुरान माडे खेचे बेगा हलो बाडे खेचे लाई बूढ़ा आदमी चाली जा नहीं तो माडे खेचे जावे भाई आपता दौड़ता गया ठेठ जगह ठाकुर जी विराजमान उन जगह पहुंच गया और पहुंच करके लो देख लो दर्शन कर लो मैं खड़ा था ठाकुर जी हैंग भेड़े बैठा है आ क्या फाड़े पर वाने कहीं को दिखे नहीं आने को दिखे नहीं बे कह रहे कटे ठाकुर जी हम विराज नहीं है देखो वे हंसे है क्यों किलकारियां करे है ने अरे मने तो को दिखे नहीं अरे को नहीं दिखे क्यों हाव हाँ भी बैठा लिए तो है कट आगे थोड़ी है कोई चश्मो लगाओगे थाने अरे भाई हाव हाँ ही लेकिन मने कौन दिखे ठाकुर जी ने पूछे क्यों महाराज मारे गुरु जी ने दर्शन को नहीं दियो ठाकुर जी अंगूठो बता दियो को देवा नहीं दर्शन नहीं दर्शन में भाई जनाब ने कहा ठाकुर जी कहने जान कह रही हो अडियो कहने लागे महाराज आप मने दर्शन दे दिया जो मारी कोई करनी नहीं मारी आचरण नहीं कोई योग्यता नहीं मारा गुरु जी इतना बूढ़ा बड़े ने जगह ने दर्शन दे ही को नहीं। अरे भाई थारे में तो योग्यता ही जन मने थारे कने आनो पड़ियो लेकिन थारे गुरु जी ने माने वो श्रद्धा भाव नहीं है इन वास्ते में मारे कने प्रकट नहीं हो महाराज अबे तो आपने कृपा करनी ही पड़ी नहीं व्या तो मारो कहना ही तो माननो पड़ी आपने वर तो भाई थारो कहना ही तो माननो है माननो पड़ी जना यू कर तू मारा दर्शन करते करते थारे गुरु जी ने हाथ लगा दे गुरु जी ने हाथ लगा मारा दर्शन कर ले तो थारे आंखे सु जो तेज जावेला वो स्पर्श होने से गुरु जी ने मायने प्रवेश कर जावेला तो थारे द्वारा माने माने पवित्रता आ जावेला तभी मैं माने दर्शन दे सकूंगा उन्हें बिना माने दर्शन संभव नहीं है जो वे बताए उपाय बतायो उन्हीं उपाय ने काम में लियो और काम लेते ही ठाकुर जी का तत्काल सामने दर्शन हो गया गुरु जी धन्य हुआ माने भी बारम्बार प्रभु के चरण रमाने प्रेम की जागृति हुई बहुत स्नेह आनंद बरसने लागियो भगवान ऐसे प्रेम के भक्ता के वशीभूत होने वाला है भाई ढाई सिर आठ रमाने वाले भक्ता ने लिए लारे लारे दौड़ता दौड़ता फिर कैड़ी कैड़ी बात जो बड़ी भावना पूर्ण क्रिया करे ऐसे प्रभु के चरण में बारम्बार नमस्कार है बोलो आनंद कंद भगवान ऐसे भगवान भी कह दियो भाई मैं तो पांच सात शेर भोजन रोज रो करूं मैं इन वास्ते लोग कोई माने घरे रखे को नहीं अब चारों वर्ण आश्रम का लोगानी जो रीति है वाली सेवा की रीति मैं जानू हूं सभी भी अच्छी प्रकार से मैं सेवा चाकरी कर सकूं मन लगा क्रिया करूं और कोई किसी से मैं सहायता भी नहीं चाहूं अरे भक्तों की सेवा टहल करने वास्ते तो मारो जीवन ही बीत जावे बीत गयो है महाराज इसलिए आप मने नौकर रख लो और मैं आपकी इच्छा अनुसार सेवा करूं मैं आज आप रो दास हो गयो हूं भक्त त्रिलोचन जी कहो ठीक है भाई मर्जी भेजो खूब भरपेट खाई जो पर वो दास कहने लागो है अंतरिया भी मारो नाम है नाम अंतरिया भी बतायो अंतरिया भी मारो नाम है परंतु मारी जो आज ज्यादा खाने की खुराक की बात है कोई ने कही जो मती दे लोगों ने कही जो मती को ई तो खावे गुणो है खाऊ करो गुणो इन प्रकार लोगों ने कहना नहीं अच्छी बात है ठीक है सर भर पेट खाओ और कोई प्रकार को संकोच मत करो निश्चय करके अंतरियामी जो सेवक बनिया माने नया जूता दे दिया नई कंबल दी और उन्हें अच्छी प्रकार से मल मल करके स्नान करायो नया कपड़ा धारण कराया और इस प्रकार मन में बड़ी प्रसन्नता हुई है आज स्वयं त्रिलोचन जी ने भी। अब भगवान तो भाई जो सृष्टि बनाई जो संग सायन दूजा बिना कोई सहयोग से आज सृष्टि की रचना करने वाला वे परमात्मा सेवा में कौन सी कमी रख सके भाई। चलो अब भक्त त्रिलोचन जी ने अपने स्त्री से कहा देखो अंतर्यामी जो सेवक है ना ये अपने इनकी दासी बन करके रहना भोजन देते समय थोड़ी बहुत भी मन में उदासी मत कर देना कभी मन लगा करके इनको भोजन कराना नहीं तो ये कहीं छोड़ करके भाग जाएगा ऐसा नौकर फिर कभी मिलने वाला नहीं जो कुछ ये खावे वही इसे नित्य प्रति खिलाओ क्योंकि नित्य प्रति संतों की सेवा करने वाला है तुम इनकी सेवा करो और ये नित्य नवीन सुख को प्राप्त करो यही कर्तव्य है ये संत सेवा और अंतर्यामी हृदय से अंतर्यामी को संतों की सेवा जो हृदय से बहुत प्यारी थी इसलिए बड़े रुचि के साथ में संतों की सेवा करने लगा वो खूब संत सेवा में लग गया। अब कुछ समय की बात सेवा करते 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 एक दफे कुछ ऐसी बात हो गई कि जिससे अंतर्यामी नाराज होकर के चला गया। अब एक दिन वो नाराजगी ऐसी हो गई कि और तो मैं बात किए बिना कभी रहने वो त्रिलोचन जी की पत्नी वो पड़ोसन के पास में चली गई और पड़ोसन ने पूछा, अरे भाई आजकल थाकोड़ी घनी दी, कई बात है, शिकायत कर दी उसने, कह दी अरे कौन अगायो, मैं तो रोजिना आटो पीस 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 थाक गई, एक अड़ो अंतरिया में नौकर रहा क्यों है मारो धनी लापरा जगो दापी को नहीं डरा कूड़ियों के दापता ही नहीं है, ऐसा उनको लिए अनाज पीस पीस करके मेरी तो कमर कमजोर पड़ गई, ये शिकायत कर दी। अब जो ये शिकायत कर दी तो भगवान तो अंतरिया में ठहरे, वो बात मालूम पड़ गई, गायब हो गए चले गए। अब उसके जाने का दुख हुआ त्रिलोचन जी को, अब संतों की सेवा नहीं बन पाएगी, इसके समान कोई संत सेवा कर सकने वाला है नहीं। अब उनकी पत्नी को भी दुख हुआ है, अंतर्यामी चला गया, और दूसरे में त्रिलोचन जी नाराज होंगे, इधर संतों की सेवा में कमी आ जाएगी। अंतर्यामी के चले जाने के बाद में 3 दिन बीत गए, त्रिलोचन जी ने अन्न जल नहीं लिया और स्त्री से कहने लगे, हाय ऐसा चतुर सेवक अब मुझे कहां मिलेगा, तू बड़ी अभागनी रही, ऐसी बात तैने क्यों अपने पड़ोसन से कही, संतों की सेवा का बहुत प्रेमी था वो, अब किस उपाय से मैं उसे वापस लाऊं। त्रिलोचन जी इस प्रकार बिलक बिलक करके रो रहे थे, आकाशवाणी हुई, हे महात्मन आप प्रसाद पालो, जल पी लो, संतों के प्रति जो कुछ आपका प्रेम भाव है वो मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसी से मैं सेवक बनकर के संत सेवा करने के लिए मैं तुम्हारे पास में आकर के रहा था, और केवल मैंने संत सेवा करने की आपसे बात की थी, मैं तुम्हारे अधीन रहा हूं, मैं दास हूं और सदाई तुम्हारे मन में ही लीन रहूंगा, यदि आप कहो तो मैं इसी प्रकार तुम्हारे यहां आकर के सेवा करूं, नौकर बन के आऊं सेवा करूं। त्रिलोचन जी ने ये बात सुनी तो और दुख पैदा हो गया, करे साक्षात जो त्रिलोकीनाथ भगवान वो मेरे यहां पर नौकर बनकर के आए और मैंने उनको नौकर बना दिया, मैं कितना अभागा हूं, उनको तो स्वामी बना करके सेवा करनी चाहिए थी मुझे, गजब हो गया। ओ आकाशवाणी के शब्द सुनकर के और भी उन्हें ज्यादा कष्ट हुआ, पछताने लगे, धिक्कार है, मैं उनका दास हूं, वे मेरे दास क्यों बने, मैंने उनकी कुछ भी सेवा नहीं की, और अब बहुत ही शर्म और हंसी की बात है भक्तों के सामने संसार में, अब मैं मुख दिखाने लायक नहीं रहा, लोग मुझे भक्त कहते हैं परंतु कहे तो हमने कौन सी भक्ति की है बताओ तो सही जरा, और मेरी मूर्खता तो देखो, मैं उन्हें नहीं जान सका, मेरे पास में रह गए फिर भी, अपने भक्तों से प्रेम करने वाले अंतर्यामी परमात्मा वे ही अपनी कृपा करके हमारे अपराध को क्षमा कर सकते हैं, मैं सदैव उनके चरणों का दास हूँ, सदा दास बना रहूं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम है, ऐसे याद कर करके आंखों में आंसू गिरा गिरा करके परमात्मा के चरणों में वंदन किया, अपने हृदय के भार को कुछ हल्का किया और अंतर्यामी के ध्यान में ही वे मग्न होकर के रहने लगे। इस प्रकार में त्रिलोचन जी हरि भक्ति करने वाले वे ही जिनकी की बैल को जीवित किया, आखिर में संतों की मंडली में जाकर के नामदेव जी के साथ में उन्होंने दर्शन पाया, ऐसे त्रिलोचन जी का प्रसंग वर्णन किया है। एक दिवस त्रिलोचन मिले पुनः नामदेव संसाधन चले, ये हरि जस गाविया ताम बैल उड़चन धाविया, ऐसा ज राम साहे की गुरुदेव नाके गाय की, इस प्रकार वे सदैव लोगों के प्राणियों के सहायक है, जिनका की निरंतर गुणगान गाया करते हैं, उस प्रभु के चरणों में हम बारंबार वंदन करते हैं। राम राम राम।